हरे कृष्णा, आप सभी का भगवत गीता पाठ में फिर से स्वागत है। कल हमने अध्याय 7 की समाप्ति की थी और कल तक हमने देखा था किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धा वास्तव में होती क्या है। हमने कल भगवत ज्ञान जो अध्याय है, अध्याय नंबर 7, उसको समाप्त किया था और हमने इन सब चीज़ों का अध्ययन किया था कि जिज्ञासु मनुष्य, अभावग्रस्त मनुष्य, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा, इन सब चीज़ों में अंतर क्या है, इन सब चीज़ों का तात्पर्य क्या है और हम किस प्रकार भगवत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ये हम किस प्रकार भगवत ज्ञान को समझ सकते हैं। ये सारी चर्चा अध्याय 7 में हुई थी। अध्याय 8 जो है वो है भगवत प्राप्ति। भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। ये अध्याय 8 का तात्पर्य होने वाला है। तो हम शुरू करेंगे और अध्याय 8 श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अब देखिए, अर्जुन जो है, हमने जब शुरू किया था ये पाठ तो हमने आपसे दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है और हम सभी को भगवत गीता पढ़ते समय अर्जुन की जगह पर होकर सोचना चाहिए, क्योंकि हमें भी वही सारी दिक्कतें आ रही हैं अपने जीवन में। हमारे लिए इतना बड़ा युद्ध नहीं है, लेकिन हमारा जीवन भी एक युद्ध की भांति ही स्ट्रगल है और हमारे जीवन में भी कई सारे सवाल आते रहते हैं दिन प्रतिदिन। तो अगर हम अर्जुन की जगह पर बैठकर देखें और भगवान श्री कृष्ण से जो अर्जुन सवाल कर रहे हैं उन सवालों को अपने जीवन में उतार कर देखें तो हमें उनका उत्तर एकदम भगवान श्री कृष्ण के मुख से मिलेगा। हमारे दिमाग में ख्याल आया होगा कि ये ब्रह्म वास्तव में है क्या, आत्मा क्या है, जिसके बारे में भगवत ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। और यहां पर अर्जुन ने ये सवाल कर लिया, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है। पिछले अध्याय में हमने बार बार पढ़ा था कि जो भी लोग देवताओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो अल्पज्ञानी हैं, उन्हें वास्तव ज्ञान का पता नहीं है। वो अपनी भौतिक जगत की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी देवताओं की आराधना करते रहते हैं। हमने ये भी देखा था किस प्रकार इन देवताओं की आराधना करने से हम उन देवताओं के लोक में ही पहुंच पाते हैं, वैकुंठ लोक जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण का धाम है वहां तक नहीं पहुंच पाते। इस चीज को हम विस्तार में इस अध्याय में, भगवत प्राप्ति के अध्याय में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो श्लोक 1 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए कि ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं, अपितु परम पुरुष से, सबसे बड़े ज्ञानी, उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा है, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। अध्याय 8 श्लोक 2। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। यहां पर यज्ञ के बारे में क्यों प्रश्न किया है, क्योंकि अध्याय 7 में हमने यज्ञ के बारे में पढ़ा था। हमने अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ होते हैं उनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। तो यहां पर अर्जुन इसको स्पष्टीकरण इसकी स्पष्टीकरण चाहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? अधि यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में जिनमें ब्रह्म तथा शिव सम्मिलित हैं प्रधान देवता हैं और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्रदेव तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया है क्योंकि श्री कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारे शंकाएं असुरों के सदृश हैं। क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे श्री कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना मृत में लगे रहते हैं यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर को स्मरण ना कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं समय इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरणों कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। इस रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है, इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। यहां पर एक चीज और हमारे महात्मा संत महात्मा कहते हैं कि जब आप सोने जा रहे हैं तो सोना जो है एक तरह से हम अपनी मरण शैया पर जा रहे हैं, क्योंकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि हम कल सुबह उठने वाले हैं कि नहीं। तो इसीलिए जब आप सोने के लिए जाएं तो कीर्तन सुने, भगवान की आराधना करें, भगवान को याद करें, भगवान नाम जप करें। तो जब हम सोते हैं तो हमें भगवत कृपा प्राप्त होती है, भगवान नाम की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हमें ये ज्ञात नहीं है कि कल सुबह हम उठने वाले हैं कि नहीं। ये जीवन का सत्य है। हजारों करोड़ों लोग जो कल रात को सोए होंगे वो आज समय भगवान के पास पहुंच गए हैं। तो इस बात को हमें अपने दिमाग में रखना होगा, पता नहीं कब वो पधार जाए, तो हर समय नाम का जो यज्ञ है भक्ति योग उसे आरंभ रखे। श्लोक 3, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। इसका तात्पर्य क्या है? ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना मृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की तटास्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता था, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका कोई एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। आई होप कि आपने अभी तक कर्म की यह परिभाषा कभी नहीं सुनी होगी, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। जो भी आप सुख भोग रहे हैं वो किसी ना किसी आपके कर्म का ही प्रभाव है। जो आप दुख भोग रहे हैं वो हमारे किसी ना किसी कर्म का ही प्रभाव है। छंदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। यह 5 अग्नियां स्वर्ग लोक बादल पृथ्वी मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है, और श्रद्धा सोम वर्षा अन्न तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियां होती हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे वह वीर्य में परिपूर्णत होता है, और जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावना मृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्घृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्रहा नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म यानी जीवात्मा को परब्रह्म यानी परमेश्वर से पृथक माना जाता है, आगे माना जाता है। श्लोक 4, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, यहां पर देखिए देहधारियों यानी जो हम भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं उनमें श्रेष्ठ यानी अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिति में पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौड़ पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय से उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनिष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके 5 अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। श्लोक 5, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव यानी मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धा सिद्ध हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण कॉन्शियस होता है, वह भी शुद्ध शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो श्री कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरिव हिष्णु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जाप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और यहाँ पर हम नाम जाप करने की बात कर रहे हैं, और हमारे दिमाग में एक चीज हमेशा सवाल उठती है कि जैसे ही हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, जैसे ही हम नाम जाप करना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटने लगती हैं जो हमारे हृदय को अच्छी नहीं लगती। इसका तात्पर्य क्या है? तो यहां पर बड़े बड़े ऋषि महात्मा कहते हैं कि जब हम भगवत नाम लेना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जो दुष्कर्म हैं उनका उनका नाश होना शुरू हो जाता है। यहां पर दो चीजें होती हैं, एक नाम जाप करने से जो हमारे पुराने दुष्कर्म हैं जो कहीं हमारे आगे व आने वाले जीवन में हमारे शायद हमारे बुढ़ापे में हमें प्रभावित करने वाले थे, वो सब अभी ही नाश कर जाते हैं क्योंकि हम भगवत कृपा की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जो भी हमारे अंदर कामनाएं बसी हैं, जो भी हमारे अंदर कुरीतियां बसी हैं, नाम जाप से ये कुरीतियां उभरती नहीं हैं, वापस जाने लगती हैं, हमारे देह को छोड़ने लगती हैं। इसीलिए कुछ समय तक हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जब से हमने नाम जाप शुरू किया है तब से सब कुछ गलत हो रहा है। तो इस चीज को हमें ध्यान में जरूर रखना है कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमने नाम जाप शुरू किया हमारा जीवन खराब हो गया, हमारे जीवन सुधरने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस बात पर विचार अवश्य कीजिएगा। अध्याय 8 श्लोक 8 श्लोक 6 माफ कीजिएगा। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? यहां पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हो गया। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीव से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे श्री कृष्ण का उस उन श्री कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से श्री कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? भगवत कृपा, भगवत प्राप्ति, यानी कि जो भी भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं उनका अनुगमन करना, उनका अध्ययन कर रहे हैं हम। और इसीलिए बार बार इस कृष्ण महामंत्र की व्याख्या हो रही है कि किस प्रकार इसे जपने से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और यहां पर एक बात कही गई है कि यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य यानी आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। इसके कई उदाहरण मिलते हैं आज के समय में भी। आपने कई बार देखा होगा कि माता पिता में किसी के ऊपर दोष नहीं मर रहा, लेकिन माता पिता सारी बुरी प्रवृत्तियों में लीन हैं, मांस ग्रहण करते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन अचानक से उनका जो बेटा आया, उनके घर में जो बेटा आया वो एकदम से भौतिक निकल जाता है, आध्यात्मिक निकल जाता है, जिसे इन सब चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं है। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि रिसेंटली एक सत्संग में एक कथावाचक उनके सत्संग में ऐसी घटना मैंने देखी है, लाइव देखी, तो ये घटना मुझे याद आ गई। और ऐसा आपने भी कई बार देखा होगा, या फिर आपने ये देखा होगा कि माता पिता बहुत आध्यात्मिक है लेकिन बच्चा जो आया वो अचानक से किसी और गुण का, बिल्कुल ही माता पिता से ऑपोजिट गुण का। ऐसा क्यों होता है? वो अगला शरीर जो वो पिछले शरीर में थे उसी को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने पुण्य किए हैं उसका भी भोग करना है, उसकी भी प्राप्ति करनी है, उसके भी जो कर्म है उन्हें भोगना है, और जो पाप हुए हैं उन्हें भी तो भोगना ही भोगना है। तो ये चीजें हमें ध्यान में, इस पे हमें विचार जरूर करना चाहिए। अध्याय 8 श्लोक 7, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव श्री कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सको। माफ कीजिएगा, इसका तात्पर्य क्या है? अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों का त्याग कर दे। मनुष्य उन्हें करते हुए भी साथ साथ हरे कृष्ण का जप कर करके श्री कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को श्री कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम श्री कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां पर एक और बात हमें समझनी होगी कि यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे कर्तव्यों को त्याग नहीं करना, और अगला स्टेज जो है इसका, जो भी हम कर्म कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, जब शाम की संध्या आराधना के लिए बैठे तो भगवान को से यह विनती कीजिए कि प्रभु आज मैंने जो भी इस भौतिक शरीर से कर्म किया वो सभी कर्म आपको समर्पित है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बड़े 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 महात्मा जन कहते हैं कि हमें जो पूरे दिन का कर्म है वो कृष्ण भावनामृत, वो कृष्ण जाप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हम कर्म तो कर रहे हैं, अपना कर्तव्य तो कर रहे हैं, अपने परिवार जो हमारे कर्तव्य हैं उनके उनके पालन के लिए अपना कार्य जरूर कर रहे हैं, लेकिन उससे आसक्त नहीं हो रहे। पैसा अवश्य कमा रहे हैं, अर्थ अवश्य कमा रहे हैं, लेकिन पाप नहीं कर रहे। जो भी पुण्य कर्म है उनके प्रति उनसे ही कार्य कर रहे हैं, उनसे ही अर्थ कमा रहे हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है? अगर आपके दिमाग में यह है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो शाम को आपको भगवान को समर्पित करना है, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि हम बुरे काम करते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर बुरे काम हम कर रहे हैं तो भगवान को समर्पित थोड़ी कर सकते हैं। तो ये प्रभाव हमारे जीवन में आने लगते हैं। आज हम श्लोक 7 तक पढ़ाई करेंगे, कल हम श्लोक 8 और उसके आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको भगवत प्राप्ति की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है उसके कुछ स्टेप्स मिल गए होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय सिया राम जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार। हरे कृष्णा। भगवत गीता पाठ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने कल तक अध्याय 8 का प्रारंभ किया था और अध्याय 8 जो कि है भगवत प्राप्ति, उसमें हमने इस बात पर चर्चा की थी, इस बात का अध्ययन किया था कि किस किस प्रकार से हम भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। आज हम अध्याय 8 श्लोक 8 और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। अध्याय 8 श्लोक 8। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना निरंतर अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य क्या है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं, अपने नाम पर महत्ता देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने से श्री कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्दों चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इसमें परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ है, अर्थ भोगता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं हैं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जाप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण श्री कृष्ण राम श्री राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट की का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में श्री कृष्ण जैसा शरीर रूप प्राप्त कर सकेंगे। श्लोक 9। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु श्री कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहां वर्णित भी है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा श्री कृष्ण, श्री राम तथा श्री कृष्ण को परम पुरुष में सोचते हैं। चाहे कोई श्री राम का चिंतन करे या श्री कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न हुई है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक भी हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं, अणु यानी एटम से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर होती है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप में इतने लघु हैं कि इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहां यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं का धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक-ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, बिल्कुल छोटी सी है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य क्या अर्थ है कि इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा सर्क, नीति, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू भी नहीं सकता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। श्लोक 10। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भौहों के बीच यानी आज्ञा चक्र में ले आएं। यहां पर षष्ठ क्रिया योग के अभ्यास का प्रस्ताव दिया गया है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में भी की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षष्ठ क्रयोग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था यानी भाव को प्राप्त नहीं होता है। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी ना किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। श्लोक 11। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी मुक्ति लाभ को प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य है श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षष्ठ क्रिया योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं जिसमें प्राण को भावों के मध्य स्थिर करके करना होता है। यह मान कर कि हो सकता है अर्जुन को षष्ठ क्रिया योग अभ्यास न आता हो, श्री कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। श्री कृष्ण यहां पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के 2 स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसे ब्रह्मचर्य जीवन यानी अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कली युग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। श्लोक 12। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति का योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इसका तात्पर्य क्या है? इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद कर देने करने होते हैं। यहाँ यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेन्द्रिया नेत्र कान नाक जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावना मृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को श्री कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। श्लोक 13। इस योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को पहुंच जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? यहां स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान श्री कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम श्री कृष्ण का की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जब की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। श्लोक 14। हे अर्जुन, जो अन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इसका तात्पर्य क्या है? इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थिति तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तदात्मय या मोक्ष का या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को को निष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक ओर जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। श्री कृष्ण के अनेक श्वास तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं, वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में यानी कठोपनिषद में कुछ इस प्रकार कहा गया है, जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी कुछ इस प्रकार कहा गया है, ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु, वही वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्य शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर श्री कृष्ण को ही स्मरण करता रहता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग को ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योग पांच प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति से युक्त होते हैं। दास्य भक्त, जो दास्य के रूप में भक्ति के युक्त होते हैं। सख्य भक्त, जो सखा के रूप में भक्ति के युक्त होते हैं। वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति से युक्त होते हैं। तथा माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति के युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता और उन्हें कभी नहीं भूल पाता है, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार श्री भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। श्लोक 15, मुझे ये प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इसका तात्पर्य क्या है? चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण का सामिप्य सामिप्य माने उनके उनके नजदीक रहना चाहते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। श्लोक 16। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इसका तात्पर्य क्या है? समस्त योगियों को चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे श्री कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोक उच्च लोक को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्म लोक, चंद्र लोक तथा इंद्र लोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पांचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्म लोक में वह कृष्ण भावनामृत का अंशुलिन नहीं अनुपालन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोक में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है, जो कुछ इस प्रकार है। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्म तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। श्लोक 17। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्म का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्म की रात्रि भी होती है। इसका तात्पर्य क्या है? भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्म का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कली के 1000 चक्र हैं। सतयुग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग सत्रह लाख 28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युगों में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 78,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का हास्य होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 4,64,000 वर्षों तक चलता है, सबसे अंत में कलयुग, जिसमें हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहां तक बढ़ जाते हैं कि इस युग में अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग में युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्म का एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्म ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्म के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के अरबों खरबों वर्षों के तुल्य हैं। इन गणनाओं से ब्रह्म की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यातः की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणान्व में असंख्य ब्रह्म अंटार्कटिक सागर में अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्म तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्म भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूत नहीं होते, किंतु चूंकि श्री ब्रह्म इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जहां तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्म तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। श्लोक 18। ब्रह्म के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। श्लोक 19। जब जब ब्रह्म का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्म की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्म का एक दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्म की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना प्रकार की शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर भगवान श्री विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्म का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंत तो गत्वा जब ब्रह्म का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्म का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। आज हम श्लोक 19 तक पढ़ाई करेंगे, कल हम श्लोक 20 और उसके आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अभी हम जो भक्ति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति जो अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें हमने बार बार इस महान मंत्र का प्रभाव पड़ा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवत प्राप्ति में, ये भगवत आराधना में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो इस अध्याय में हम बार बार उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस मंत्र का सहारा लेना अति आवश्यक है। सो आइए एक बार एक साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सियाराम, जय श्री राधे कृष्ण। मिलते हैं कल अध्याय 8 श्लोक 20 और उसके आगे का अध्ययन लेकर। नमस्कार, प्रणाम, आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा, आप सभी का भगवत गीता पाठ में एक बार फिर से स्वागत है। हमने परसों हमने अध्याय 8 जो कि भगवत प्राप्ति, उसका प्रारंभ किया था। और हमने कल अनेक अलग अलग प्रकार की विधियां देखी थी जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और पिछले 2 दिन से हम इस महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन महामंत्र का प्रभाव जान रहे हैं। ये हमें भगवत प्राप्ति में किस प्रकार मदद कर सकता है, इस महामंत्र की हम महागाथा इस भगवत प्राप्ति में सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम अध्याय 8 श्लोक 20 और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। अध्याय 8 श्लोक 20। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश यानी श्रेष्ठ और कभी ना नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनिष्ट होती रहती है। श्री कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में भी हुई है। श्लोक 21। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बनाते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। इसका तात्पर्य क्या है? ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्प तरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गौएं भी हैं जिन्हें सुर भी गौएं कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं वेणु क्वणंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दनों के समान है और उनका शरीर मेघों का वर्णन है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात कर देता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में भी मिलता है। वैदिक ग्रंथ ये कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस आना नहीं होता है। श्री कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं श्री कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति यानी वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है, जब श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इस भूमि पर जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है क्रीड़ा की थी। और इसीलिए अगर हम किसी भी भगवत प्रेमी भगवत महात्मा को सुनेंगे तो वे वृंदावन की महत्ता वृंदावन की महानता का दृष्टांत आपके ऊपर जरूर प्रभाव डालेगी। वृंदावन क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, भगवान श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल है, भगवान श्री कृष्ण जिस भूमि पर अपने पग धरे थे उस भूमि की महत्ता बहुत बहुत महान होनी है। श्लोक 22, भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। इसका तात्पर्य क्या है? यहां पर स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष श्री कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है और जो ऐसा स्थान है जहां सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं, जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सभी इसी परमानंद का गुण है, वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया था। जहां तक कि इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांतस्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। श्री कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तया शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगह कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहते हैं जिसका नाम श्री कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह हैं और एक रूप में स्थिर होकर भी वह अपने को लाखों श्वासों में विस्तृत करते रहते हैं। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हुए हैं और जिसके पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोग की अध्यक्षता करने वाले भगवान के श्वास चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है, जिन्हें जैसे पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में भी कुछ इस प्रकार इसकी पुष्टि की गई है। यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। वेदों में कहा गया है, परास्य शक्ति विवर्ध शूर्यते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत के में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। इस बात पर क्या कभी हमने विचार किया है, जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, उनसे एक बात, एक प्रश्न हम कर सकते हैं कि अगर कोई नहीं है, कोई एक सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं है, तो ये जो अभी हमारी हमारा सूर्यमंडल, सिर्फ सूर्यमंडल ले लीजिए, ये सूर्यमंडल इतने सुचारू रूप से किस प्रकार चल पा रहा है? आखिर इस सूर्यमंडल की रचना किसने की है? और इतने प्रेसिशन से कि अगर हम चाहे या ना चाहे, ये एकदम अच्छी तरह से काम करती रहती है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं सूर्यमंडल, और अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी देखिए तो उसमें करोड़ों सूर्यमंडल उपस्थित है, और ऐसे ही करोड़ों मिल्की वे गैलेक्सीज हैं। तो इन सब का संचालन कौन कर रहा है इतनी सुदृढ़ता से? इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। अगले अध्याय पर हम अगले श्लोक पर हम चलते हैं, श्लोक 23। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। इसका तात्पर्य क्या है? परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आशक्त आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योग सिद्धि होती है तो वह इस जगत के से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकते हैं। किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होते तो उनकी सफलता उनके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बल्लदेव विधाभूषण के अनुसार यहां पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठा देव के लिए हुआ है। श्लोक 24। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के सुभक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इन संसार के शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इस सबों के अधिष्ठा देव होते हैं, जो आत्मा को यात्रा की व्यवस्था आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य के नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोग वश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। और इस बात की पुष्टि हमें एक और महान संत की जीवनी पढ़ने पर होती है, कबीरदास, जो काशी में थे और उन्हें किसी ने कहा कि काशी में जो भी शरीर त्यागते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं पर एक गांव है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उस गांव में यदि कोई शरीर त्यागे तो उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। जब कबीर जी ने, संत कबीर ने इस बात को सुना तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर काशी में मरने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है तो मेरे पूरे जीवन भर राम राम कृष्ण कृष्ण जाप करने का क्या फायदा। और वे उस गांव में गए जहां पर कहा जाता था कि यहां पर शरीर त्यागने से नरक की प्राप्ति होती है, वहां पर जाकर उन्होंने भगवत नाम भगवत आराधना करते हुए कृष्ण भावनामृत में लीन रहते हुए अपने शरीर को त्यागा। तो महत्वपूर्ण यह है कि हम भगवान की भक्ति कृष्ण भावनामृत की ओर चढ़े, तभी हम भगवत प्राप्ति की ओर दृष्टि भी लगा सकते हैं। उस समय शुभ मुहूर्त अशुभ क्षण कुछ मायने नहीं रखता। श्लोक 25, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। इसका तात्पर्य क्या है? भागवत के तृतीय स्कंध में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में त्रिपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों में इन्हें देख सकें या नहीं। श्लोक 26, वैदिक मतानुसार इस संसार के प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग में जाता है तो वह वापस नहीं आता, क्योंकि किंतु अंधकार के मार्ग में जाने वाला पुनः लौट कर आता रहता है। इसका तात्पर्य क्या है? आचार्य बलदेव जी विधाभूषण ने छांदोग्य उपनिषद में ऐसा ही विवरण उद्भव किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतन रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते। श्लोक 27, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम मुक्ति में सदैव स्थिर रहो। इसका तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैवाश वशात से। भक्त को कृष्ण भावना मृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी को भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावना मृत में तल्लीन होने पर, यानी उसके अंदर पूरी तरह लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है, वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश भी कुछ इस प्रकार है, मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ लीन होकर करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्ति कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होती, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। श्लोक 28, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य क्या है? यह श्लोक सातवें तथा आठवें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए होता है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं, जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उस देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीव के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदं विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में तथा सातवें अध्याय में दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म में इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्ति को संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। सातवें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति से भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो पाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4वें अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है, और भक्ति के कारण श्री कृष्ण या ईश्वर तथा श्री कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाते हैं, तब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिसके भक्त श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होते हैं, जहां वह नित्य सुखी रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आज के लिए बस हम इतना ही पाठ करेंगे। कल से हम अध्याय 9 और उसके आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण, जय सिया राम। नमस्कार।